तब उनकी ये अंश या प्रकाश या वैभव। और इसके बाद में जो देवी दुर्गा इत्यादि जो कभी जाती है महामाया, ये सब विकृत छाया है। तो इस तरह से अनंत रूपों में लोग प्रकाशित, और उनमें अनंत रूपों में तीन प्रधान है, चित शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति। मायावादी लोग, अद्वैतवादी लोग भगवान को निराकार शक्ति कहते हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं, किंतु शास्त्रों में सर्वत्र ही उनकी शक्ति मानी गई। नहीं तो जगत की सृष्टि भी नहीं होती, हम लोग भी नहीं प्रकाशित होते। उसमें एक चित शक्ति, एक माया शक्ति, एक जीव शक्ति। इस शक्ति के द्वारा वैकुंठ में जो कुछ भी चीजें हैं सब उनसे प्रकाशित होती, और उनका जन्म और मरण नहीं, वो सब नित्य। और कृष्ण का शरीर, वहां पर उनके परिकरों का शरीर वैकुंठ इत्यादि में, या वहां पर ब्रज में जितने भी वृक्ष लता इत्यादि की दिखते हैं, सब कुछ जितने भी हैं सब चित शक्ति का ही परिणति। और माया शक्ति जीव शक्ति को छोड़ करके और चित शक्ति को छोड़कर इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ दिखता है, जो कुछ दिखता है, वो सब माया शक्ति का परिणाम है। जैसे हम लोगों का शरीर वृक्ष, घास, कीट, पतंग, पर्वत, नदी, नाले, जो कुछ भी इस जगत में देख रहे हैं सब ये माया शक्ति का परिणति है। परिणति मैंने माया शक्ति का ही वो रूपांतर। और ये शरीर अंदर में जो शक्ति है उसके रहने से हम देखते हैं, ये शरीर देखता है, उसके रहने से ही आंखें देखती हैं, मस्तिष्क काम करता है, पैर चलते हैं, कुछ जो कुछ भी करते हैं, वो जो शक्ति है वो है जीव शक्ति। वो भगवान की का अंश है, कैसा अंश, केवल मात्र तटस्था शक्ति या जीव शक्ति संबंधित ब्रह्म का या भगवान का वो अंश है। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जाए, चित शक्ति को अंतरंगा करते हैं, अंतर अंगा अंतर अंग में अवस्थित रहती है इसलिए अंतरंगा। और माया शक्ति को बहिरंगा, बहिरंग में अवस्थित है इसलिए उसको बहिरंगा। और जीव शक्ति को तटस्था करते हैं, अर्थात अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति, शक्ति और माया शक्ति के बीच में यह रहती है इसलिए तटस्था शक्ति। तटस्था में तत्व स्थिर, तत्पर स्थिर, तट किसको कहते हैं, नदी के किनारे उसके तट पर जब रहता है तो उसको तट, जहां पर जल और फल मिलता है, जहां जल और स्थल मिलता है उसको तट तो कहते हैं, किंतु कहां मिलते हैं, कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है, लंबा चौड़ा स्थान भी नहीं है, वो काल्पनिक रेखा है। वो जब पानी कम जाता है तो तट नीचे चला जाए, और पानी बढ़ जाएगा ऊपर तो उत्तर ऊपर चला जाएगा। दोनों का जो मिलन स्थल है, जल और फल जहां मिलते हैं, ये काल्पनिक रेखा कहां मिलते हैं, जिस समय जहां रहता है वहीं पर मिलते हैं, किंतु वह इतना बारीक होता है, इतना बारीक उस पर कुछ रह ही नहीं सकता, ये कल्पना आती थी। तो ऐसे ही जीव माया शक्ति और चीज शक्ति के बीच में आने के कारण वो कहां पर स्थित है ये ठीक से अनुमान नहीं लगाया। अर्थात जीव स्वरूपतः चेतन है किंतु जड़ माया में प्रवेश कर सकता है इसलिए उसको पकड़ सकता। कब से ये माया में पड़ा हुआ है कोई ठीक नहीं, अनंत काल से, अनादि काल से है। कब से? जब से वो प्रकट हुआ, अर्थात जब से कृष्ण तभी से वो है। तब ही लोगों को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है, उसका स्वभाव तटस्थ है इसलिए उसको तटस्थ कहा। क्या यदि माया की तरफ में देखेगा तो उसको खो करने के लिए माइक आवरण में वो फंस जाता है, और जब भगवान की तरफ देखता है, भगवान की सेवा की इच्छा होती है, तो वो वैकुंठ जगत में चला जाता है, इसलिए उसको तटस्थ कहा। तो अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ, ये तीन शक्ति, अंतरंगा स्वरूप शक्ति, सवालतर सदातर मानी सबसे श्रेष्ठ, अंतरंगा शक्ति भगवान के अंगों में जाति जगत में प्रकाशित है, इसलिए इसको सबसे ऊपर कहा। ये अंतरंगा शक्ति अथवा चित्त शक्ति सदातर सबसे ऊपर कार्य कैसे करते हैं, कहीं प्रमाण है तो उसके लिए बता रहे हैं। हाँ, विष्णु पुराण में इसके लिए ऐसे ही नहीं करते। विष्णु शक्ति परावक्ता क्षेत्राख्या क्षेत्राज्ञा तथा तथा करा अभिज्ञात संज्ञान कृपया शक्ति निश्चय। अर्थात विष्णु शक्ति का नाम है पराशक्ति, भगवान परम पुरुष है, इसलिए परम पुरुष की शक्ति का नाम पराशक्ति है। और वही तीन के रूप में प्रकट है, एक पराशक्ति, एक क्षेत्राज्ञा और एक है अपर। तो यहां पर पराशक्ति हो गई चित्त शक्ति और क्षेत्राज्ञा मानी जीव और अपरा माने माया। माया ये तीन शक्ति के रूप में लिखा है। अविद्या कर्म संज्ञान तृतीय शक्ति ईश्वर, ये जो अपरा शक्ति है ये तृतीय, ये तृतीय अपरा शक्ति। अविद्या कर्म संज्ञान इसको अविद्या भी कहते हैं, सचिदानंदमय कृष्ण है उसको, कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंद शब्द में तीन चीजें, सचित आनंद, और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि वस्तु एक है, परतत्व वस्तु एक ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति दूसरा कुछ नहीं। जीव क्या है? वो ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्मैव न अपर, अपर दूसरा कुछ नहीं। और ये जगत असत्य है, वो लोग कहेंगे क्या कहते हैं, तो कहेंगे जिसे तब तो सच्चिदानंद में ये जो तीन आया, ये ब्रह्म सच्चिदानंदमय है, शास्त्रों में भी आया है ब्रह्म सचित आनंदमय। तो ये तीन क्यों हुआ? तीन क्यों? सचित आनंद ये तीन हो गया। तुम कहते एकम एव अद्वितीय, एकम एव अद्वितीय, दूसरा कुछ ही नहीं, बस एकम एक ही है। तो यहां पर सचिदानंद में सचित आनंद ये कैसे हुआ? तो वो कहते हैं जैसे बैंगन में फल बहुत लगे हुए हैं, शंकराचार्य की मैया ने कहा अरे बैंगन ले आओ, तो वो एक तोड़ करके ले आए, और कितनी आए हैं 10-20, तो एक बैंगन में क्या होगा? इसलिए उसकी मैया ने कहा जरा अधिक बैंगन ले आए, तो वो एक बैंगन तोड़ करके ले आए। तो मैया ने कहा
इतने बैगन में देकर के आई थी और एक ही ले आया, तो ऐसे कितने आदमी है तो काम कैसे चलेगा, अभी क्यों नहीं आया, तो मैं एक ही था मैं एक ही लाया, कैसे ये चलो तो बस उसको दे दें। देखा जी बैंगन एक पेड़ में दस दस बीस बीस गठ के बड़े बड़े काले काले बैंगनी रंग के बैंगन, अरे झूठ बोलना सीख लिया हमसे, एक दो तो, कितनी से बैंगन लगे हैं, अरे नहीं भैया एक 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 ही तो सरसों एक एकड़ एक ही बैंगन, पर ये तो तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, एक दो तीन नहीं जानता बस एक पर दे दिखाई नहीं पड़ता है तुमको, ये दस बीस बैलून कितने लगे हुए हैं, ऐसा वो है उनको कहा जाता है अदल का जो खेता
खेता
समझा, मैंने उनको मारने पर भी लज्जा नहीं हुई,
ठीक ठीक ठीक
मानने पर भी कोई लज्जा नहीं, जाने देने से भी नहीं, काम करते हुए तो उसे कहा गया कि अच्छी ये शक्ति का आनंद उनको कहा गया, तो सत माने जो होता है वही चीतनी, सत माने सब चीत माने सब आनंद माने सब, सब एक तीन है नहीं एक ही है, शक्ति का आनंद तीन नहीं है एक ही, तो ये तीन कैसे कहा गया, पहले कहा गया क्योंकि एक ही है, सब एक है चीत भी एक है और रुपी एक, मैंने तर्क वितर्क झूठ मूठ का बात का काम लाते हैं, सत और चीत आनंद भगवान तीन प्रकार के हैं, जगत में जितना जो कुछ है यह तीन भागों में विभक्त हो सकता है, सत चीत और क्या, सत माने सत का
माने क्या,
अचित मैंने ज्ञान और तीन ही चीज, जब सब विश्व को भाग कर दिया जाए तो ये तीन ही चीज है, किसी की सत्ता होगी और उसमें ज्ञान कुछ जरूर होगा और उसमें आनंद कुछ होगा, इसके अतिरिक्त और कोई सत्ता ही नहीं, ये तीनों चीजें सत्ता परिपूर्ण रूप में कृष्ण के अंदर, तो सत मैने सत्ता अचित मैने ज्ञान और आनंद का आनंद ही है, सच्ची दान ये तीन ये वृत्तियां हैं पराशक्ति की, उसमें जो चित्त कहा ना वही एक ही शक्ति पराशक्ति की तीन वृत्तियां कैसे आनंद से लादी आनंद अंश से लादी और सब अंश से संधि और चीज अंश से सब, उनकी शक्ति तीन प्रकार की सब चीत तो चीज अंश से संदित, संदित मैंने ज्ञान, ये ज्ञान ही पीछे भाव के रूप में परिणत हो जाता है, कैसे जैसे मैं हूं, मैं कौन हूं, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी की पत्नी, ये सब भाव, यही भाव भाव होने से तब प्रेम होगा, जब तक ये संबंध रूपी भाव नहीं होगा, यही भाव अंत में जाकर के कृष्ण के प्रति राजी होने पर ये आनंद का भाव, चीज अंश से संवेद, संवेद माने नॉलेज ज्ञान, प्रारंभ से लेकर के अंत तक जितना भी ज्ञान होता है ये संधि, जारी ज्ञान परिमाण लागिनी संधि संबित कई को सब संशय लापकारी विश्वास कई लोग मुदत, इस जगत में वही संबित संधि लागिनी किसी न किसी रूप में इस जगत में भी है, यहां पर इस जगत में राग तापकारी जो सुख का कारण है वही दुख का कारण हो जाता है, पुत्र नहीं था तो दुख है, पुत्र हुआ आनंद हुआ, और पुत्र को पुत्र निकल गया तो क्या हुआ? अधिकांश रूप में ऐसा ही। उसी तरह से सभी कुछ इस जगत पहले सुख के लिए कारण होता है, अंत में दुख का कारण होता है। क्या एक ही समय में मिश्रा मिश्रा में सुख और दुख दोनों का कारण? श्रीमद् भागवत में बताया चित्र के उपाख्यान में, पुत्र हुआ तो आनंद हुआ, मर गया बड़ा पास हो। इसी तरह से सब जगत ये भरा पड़ा। इस जगत में पूर्ण रूप से सुख रूप से राग माने आनंद और ये सब कुछ नहीं है। इस जगत में तो गुण युक्त, गुण माने शब्द राजा और उत्तम, ये तीनों से मिले। विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व का कोई पता नहीं। उस जगत में दुख क्या है सुख क्या है ये कुछ लोग नहीं जानते। उस लोग में तीनों शक्तियां विशुद्ध रूप में अवस्थित होती हैं और कृष्ण में होती हैं। वहां पर ये माइक गुण दुख शोक इत्यादि उसमें कुछ भी नहीं होता। अब हलादिनी आनंदान से हलादिनी बदलाया उस शक्ति को, पराशक्ति को। कृष्ण के हलादे का के नाम कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, इसलिए उसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद प्रहलाद प्रतिष्ठित से आह्लाद आनंद। हम लोगों में क्या है, जड़ विषयों की अनुभूति करके या जड़ वस्तुओं को पा करके हमारे हृदय में प्रहलाद होता है और थोड़े देर के बाद में वो वस्तु दूर हो जाती है। वहां पर ऐसा कभी नहीं होता, वहां पर विशुद्ध रूप में शब्द में रहता है। राग का काम ही है क्या, कृष्ण को आनंद दे। कैसे आनंद देता है तो वो उसी के लिए बता है, सही शक्ति द्वारा सुख आस्वाद आत्मा। कृष्ण उसी प्रलादनी शक्ति के द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं, सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वाद। कृष्ण सुख स्वरूप स्वयं है और उसी शक्ति के द्वारा फिर और भी सुख आस्वादन करते हैं। नव नुमायमान भक्त बने सुख दीते लादनी पर। इस लादनी के कारण ही लादनी शक्ति के माध्यम से जीवों को भी यह सुख तीन प्रकार का हुआ। जड़ जगत में जड़ वस्तुओं की प्राप्ति से और सानिध्य से जो सुख होता है वो जड़ सुख का मेटेरियल सुख का। और जीव के स्वरूप में एक आनंद है वो बहुत थोड़ा है, आंशिक रूप में कण के रूप में है, उसको कहते हैं ब्रह्मानंद सुख। और चित्त जगत में कृष्ण के सानिध्य में कृष्ण की सेवा से जो सुख पाया जाता है उसको कहते हैं प्रेमानंद। इसके तीन रूप, सत्ता भी वैसे तीन है। उस जगत में जीवों का जो स्वरूप होता है सुख सत्ता होता है, उसका जन्म मरण नहीं होता। और जीव स्वरूप में हुआ उसका स्वरूप बहुत अनंत है, वो माया के कार्य अत्याधिक किया जाए और कृष्ण के सानुक कराने से माया में नहीं पड़ता। और अभी हमारा जो स्वरूप है ये पंचभूत का स्वरूप है, यही शरीर उसका तृप्त करना जानते भी है, शास्त्र भी पढ़ते हैं कि मैं यह शरीर नहीं मरूंगा तभी इसकी आसक्ति और मैं हूं ये भाव नहीं जाता। कांटा लगने से हम हजार आदमी मुक्त हैं कभी कांटे में हम फंसते जाएंगे और दुख और अपमान के लिए ये ऐसी तो वो जो शक्ति है लादनी शक्ति कृष्ण को हम लाद करती है, आनंद को बढ़ाती और जीवों को भी कृष्ण से आनंद दिलाती है उनकी सेवा में। कैसे लादनी तो शक्ति है, रूप कैसे हुआ? रूप हुआ ऐसे लादनी सार अंश प्रेम ना, राजनी सारांश सार प्रेमन, एक राजनी शक्ति है ना, ये आनंद है और उसमें संबित जो थी ज्ञान अथ भाव, ये मिल करके भक्ति हुआ, ये वृत्ति हुई, ये पहले मन में है भाव। पहले कोई भी चीज की रूपरेखा होती है वो भाव से उत्पन्न होती है भीतर में अंतर में, और फिर उसका ऊपर से दिया। जैसे एक कलाकार है उसको चित्र बनाना है, तो चित्र कैसे बनाएगा, पहले मन में विभावित होगा, मन में बनाएगा। जब मन में ठीक कर लिया कि ऐसे हम आंख ऐसे नाक कान ये सब हम करेंगे, ये मैंने प्रौढ़ कलाकार है, कच्चे कलाकार नहीं। कच्चा कलाकार तो ऐसे होते हैं जो शंकर बनाने बनाते बनाते बंदरगढ़ में शंकर की मूर्ति बना रहा था, और बनाते बनाते तेरा बंदर जैसा हो गए, पहले ये बंदर ही थी, बस बंदर हो गया। ऐसा नहीं, प्रौढ़ कलाकार है, मन के अंदर में भावना कर लेंगे कि हमको ये चीज बना, और फिर उसी को बांधने का जैसे हो गया तैसे नहीं, ये कलाकार का काम नहीं, ये तो जैसे हो गया तैसे हो गया, ये नहीं। कलाकार वो है जो अपने मन की वृत्तियों को एकदम जगत में प्रकाश, वो कलाकार। तो वैसे ही ये हलाली तो शक्ति है रूप से धारण की, उसके लिए बदला है। संधि शक्ति में भाव विस्तृत हुआ, दोनों मिलकर के हुआ शुद्ध सत्व रूपी भाव, वो बहुत रूप में विभक्त होकर के जीव रूप में प्रकटित हुआ। अब उसमें स्थायी भाव, उसके ऊपर में विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी मिलकर के एक रस को प्रकट किया, उस रस का नाम हुआ प्रेम। वही प्रेम आगे बढ़ करके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव, ये महाभाव रूप धारण करता है, और वही रूप धारण करके गोपी होता है लाखों कोटि, और लाखों कोटि गोपियों का भाव सम्मिश्र मन करके एक राधा जी। यही राधा जी राधनी सार अंश प्रेम का नाम आनंद चिन्मय रूप अवश्य राखा, आनंद और चिन्मय, चिन्मय मैंने वैषम्य, ये दोनों मिलकर के इसका नाम प्रेम हुआ। यही प्रेम आगे बढ़कर के प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग होकर के महाभाव हुआ। अनुराग कब गया, राग हुआ कब, जब उसके भाव नित्य नवीन कृष्ण के रंग में रंगते चले रहते हैं, तब हुआ ये राग। और प्रतिक्षण नवनमायमान होता है तब इसको कहते हैं अनुराग। अनुराग जब स्वसंवेद दशा को प्राप्त होकर के जावद आश्रय वृत्ति में उपस्थित होता है, तब होता है महाभाव। यहां पर दोनों मिले हुए संबित और ज्ञान, सही महाभाव रूपा राजा का ज्ञान, यही महाभाव ही श्रीमती राधिका जी का रूप था। ये एक ऐसा चिंता नहीं है भाव, कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करता है, ये चिंता नहीं है। चिंता नहीं किसको कहते हैं, चिंता हो और साथ साथ में कोई भी काम ना करो उसे जरूर, जैसे जागतिक एक चिंता नहीं के लिए कहते हैं, मानने की कोई सदा व्यक्ति किसी जंगल में आपके करता द्वार पहुंचा, कहीं जंगल में एक सुअर को देखकर उसके पीछे घोड़े को छोड़ दिया, और वह सुअर छिपता हुआ भागता हुआ चिड़ा मेरा होता हुआ कभी जंगल में उसे दे गया। शाम हो गई, जब शाम हो गई कुछ करके अंधकार हो गया, अंधकार में वो विलीन हो गया। अब उसको जब नहीं देखा तो देखा अरे सूर्य तो अब डूब गए, अंधकार हो रहा है, अब कहां जाऊं, कोई पथपात कुछ नहीं, और जंगल में सिंह भालू इत्यादि हाथी ये सब गर्जन करने लगे। अब दर्द मारे सब पक्ष बड़ी जोर से प्यास और भूख लगी, सब करते शुरू हो गया। इतने में वन में एक वृक्ष के नीचे पहुंचा, वो वृक्ष कौन था, कल्पतरु। कल्पतरु माने वही चिंता नहीं समझो, समस्त इच्छाओं को कल्पनाओं को पूर्ण करने का। तो वहां पर पहुंच करके सब करके देखा छाया है, यहां पर यदि शीतल जल उनको मिल जाता कई प्राण निरल होता। इतने देखा कि तुम शीतल पानी आ गया, पानी तो मिला नहीं थी, जब कुछ खाने को मिल जाता। ऐसे में देखा कि खाने के लिए जो कुछ आता था वही आ गया, बड़ा प्रसन्न को खाया पिया। अरे यही एक पलंग होती है होता तो मैं जरा भी शाम कर लो, इतने में पलंग वहां पर आ गया, उस पर भी शाम कर लो। जब थोड़ा सा सो लिया कहा था कि नींद खुली, फैमिल का रात्रि बाप सिंह गर्जन कर रहे, सोचा जी सारे कोई सुखना आ गया। इतनी शत्रु सिंह जब आ गया था, अरे कहीं मुझे खा लो, ये तो जागतिक चिंता मणि या कहकर चलता ही है, और अपराधिक चिंता मणि की चिंता कीजिए। अपराधिक चिंता मणि कौन है, यही है महाभाव चिंता श्रीमती राधिका, जो कृष्ण रूपी परम पुरुष की समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, जो कुछ भी चाहेंगे ना वैसा, और किसी में क्षमता नहीं, न वैकुंठ में किसी को है और न तो प्रजन है न कर्म, बस एक हाथ श्रीमती राधिका में ही ऐसा नहीं उनको पूर्ण करता है। महाभाव तयोरूप उभय मध्ये राधिका सर्वास्थिका सर्वसाधिका, महाभाव स्वरूपेयम गुणे अति बनी है। उभयोर जितनी ब्रज में गोपियां हैं उनमें समस्त गोपियों में राधिका और चंद्रावली वो सबसे श्रेष्ठ, रूप में गुण में सब, और उन दोनों में भी महाभाव स्वरूपा यम, यम माने राधिका जी महाभाव स्वरूपा है, गुणों में सबसे अत्यंत श्रेष्ठ ये चंद्रावली से भी श्रेष्ठ है, कृष्ण की अत्यंत वर्ण लगा है, उनको भी मुग्ध कर देने वाली है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ माने। कोई महिला मस्त महिला वही महाभाव स्वरूपा इस रूप में सुंदर, प्रेरण स्वरूप देव प्रेरण रखा कृष्ण साधारण रूप में आत्माराम है और आत्मकाम, उन्हें कोई भी कामना नहीं, उनकी समस्त कामना परिपूर्ण है, उनको किसी चीज का अभाव नहीं। हम लोग जितना भी पूर्ण हूं हम लोगों में अभाव रहेगा, कुछ न कुछ अभाव रहेगा, कोई भी ऐसा जगत में नहीं है जो जन्म है उसमें वो अभाव रहेगा, चाहे वो कोई विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनी भी हो जाए एक दिन मरना पड़ेगा, मृत्यु का अभाव उसमें नहीं, रोग का अभाव नहीं, अभाव से ही उसके शरीर का दर्शन हुआ है इसलिए जरूर है, और जीव भगवान का अंश है इसलिए यह कभी पूर्ण होगा नहीं कि यह अभाव बना है, किंतु भगवान पूर्ण है, उनसे जितना जो कुछ भी निकलता है वो भी पूर्ण है, और जो निकलने वाला जो है वो भी पूर्ण है, और भगवान निकले हुए में पड़ी वो भी पूर्ण है, इसलिए भगवान का पूर्ण है, किंतु जी कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो प्रेम स्वरूप देव किंतु कृष्ण में कोई भी इच्छा और वांछा नहीं, यह बात ठीक है, उनको कभी भी कमी नहीं है, उनको किसी से डर नहीं है, उनको शोक नहीं है, मोह नहीं है, कुछ भी नहीं, तब भी एक कमी है। क्या कमी है? नहीं, कमी यह है जब कोई भक्त उनको सेवा करने की कोई वासना करता है तो उसको भोगने की इच्छा उनमें हो जाती है। मान लिया कि मुझे प्यास नहीं है और एक छोटा सा बालक कोई बाल्यही लड़की छोटी सी बड़े प्रेम से दादू 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 कहती थी या बाबा कहती थी, खूब अच्छा सुंदर सुशीतल जल लाए महाराज या शांति, मैं क्या करूं? प्यास नहीं है, ऐसा कहूं तो लोग कहेंगे जैसे ये औरस है, इसलिए जब लाई हमने हाथ से ले लिया, प्यास भी नहीं है, तभी मुख से लगा दिया, एक घूंट पानी पी लिया। ऐसे ही कृष्ण में किसी चीज की कमी नहीं है, किंतु उनका यही स्वभाव है, ये जथा मां तथा जनते काम तथा जो जैसा हमारी सेवा करने की अभिलाषा करता है उसकी उस इच्छा को उसी रूप में पूर्ण करता, उसकी इच्छा नहीं ये ठाकुर को खिला। एक लड़का था, उसके पिताजी थे, पिताजी ने पिताजी ठाकुर की रोज सेवा करते थे, सावरग्राम ठाकुर थे, उनकी सेवा करता था, रोज पांच छह मोटी मोटी रोटियां और सब्जी, कभी दाल कभी दही कभी माखन कभी मिश्री, वो ठाकुर जी को भोग लगाए, भोग लगा करके और ले आकर के उतार करके भोग प्रसादी और फिर अपने सब लोग परिवार के सहित से खाने के। एक दिन वो किसी दो चार दिन के लिए बाहर जाने लगा तो उसका छोटा सा बच्चा था, बच्चे को बुलाकर जो बेटा मैं जा रहा हूं, आज कोई पुजारी मिला नहीं तो मेरे उपस्थिति में तुम ही ठाकुर को पूजा कर और ये भोग ठाकुर जी के सामने रख देना, उनको खिलाते रहे, कोई तरह की कमी नहीं। ये कहकर के वो चला गया, उसकी मैया ने रसोई बनाई और रसोई बना करके वो रोटी रोटी और सब्जी दाल ठाकुर जी के सामने रख रख करके खड़ा हो गया। ठाकुर जी हो को आरोगी तीन बार कहा, फिर आंख बंद कर लिया जैसे उसको पिताजी करते थे और ताली बजाई और उनको आवेदन करके वहीं पर खड़ा रहा। दो चार मिनट हो गए, फिर आंख खोला तो देखा जी उसको खाया नहीं जाता था, कैसा पड़ा है। फिर उसने कहा ठाकुर जी आप रुष्ट क्यों हैं, पिताजी तो आपको देते थे खा लेते थे और मैंने दिया खाते नहीं, आप खा लें। फिर आप बंद किया देखा जी खा ली, फिर आप खोला तो देखा जी नहीं खाए, तो उसको बड़ी प्लानिंग थी, मैं पालक हूं और प्रेमी नहीं आता है इसलिए नहीं, तो बिलख बिलख करके रोने लगा जो प्रभु हमारे दिन में तो आप खा रहे हैं। जब रोने लगा तो अंतर से उसकी ये कामना, तो सचमुच में देखा जी ठाकुर जी ऊपर आए सावरग्राम और वहां पर बैठ गए और हाथ उसमें से निकल आए और निकल करके ठाकुर जी ने उसे उसके सामने देखा और सब खा लिया। जब पूरा खा लिया तो इसने हाथ धुला दिया, इसके बाद ठाकुर जी अपने आप सिंहासन पर गए। अब ये किसान होकर के चला गया खाली खाली, सुन मैया को दे दी थाली, अरे रोटियां कहां गई, प्रसादी प्रसादी क्या, वो तो सब ठाकुर जी ने खा लिया खा लिया। ऐसे दो तीन दिन हुआ, उसकी मैया भी बड़ी आश करती थी। अब तीसरे दिन पिताजी मैया ने कहा ये तुम्हारा बेटा कैसा, तुम आता था तो प्रसाद ले आता था, तो प्रसाद आता नहीं सब पाता जी ठाकुर जी खा लिया, मैं जाने कौन खा गया। तो वो आकर के कहा अच्छा आज दो मैं छिप करके देखूंगा, तो छिप करके देखने लगा
तो अर्थ ठाकुर जी आ नहीं गए। बच्चे ने कहा जैसे अर्थ ठाकुर जी आ क्यों नहीं गए, आज क्या बात हो गई? इशारे से बताया तुम्हारे पिताजी छिप करके देख रहे हैं, कुछ नहीं। पिताजी जब ये लौट करके गया फिर ठाकुर जी ने खा लिया, तो खाली खाली क्यों, इतने दिन तक उन्होंने कहा आज खा लिए, तो सब बिगाड़ने लग गया। और ये सरल लड़का उनको दिया ठाकुर जी ने ग्रहण कर, इसी प्रकार करीब सरलता से प्रेम से देने पर लोग ग्रहण कर, कुटिल चित्त होने पर हम लोग का भी चित्त किसी का और होता है बिना नहीं लेने। तो पिता का अंत में पिताजी को तो किया हुआ खाया नहीं और उन्होंने हस्तक्षेप किया, पीछे का जन्म उठा किया हुआ करना वो पूरी के पास में अलाव नाथ में ऐसा ही देखा जाता है, उनका सर्वनाश बनता ही कर। तो प्रेम जहां रहेगा उनको भूख होती है, यशोदा के मुख हर में सत्य में भूख है, और नहीं तो यही ब्रह्मवादियों के लिए आत्मा आपका काम, उनको कोई काम नहीं साल और काम जैसे बैठे हुए, और नहीं तो सनातन गोस्वामी के यहां कच्ची अभिजली जैसे तैसी खिचड़ी ही मांग करते हैं, अरे कहेंगे तुम थोड़ा सा नमक तो रोटी के साथ में दे दो उसे रोटी, ये प्रेम की बात। तो ऐसा प्रेम होना बड़ा भारी कठिन है, तो कृष्ण को कोई भी कामना नहीं है, किंतु राधा जी की या गोपियों की सेवा की प्रार्थना को देकर के उनमें उस चीजों को ग्रहण करने की लालसा होने से ही भगवान का अवतार होता है। अवतार का कारण भी यही है, भक्तों की सेवा को प्राप्त उनके अंदर में भक्तों की सेवा करने की लालसा होती है। इसलिए हम लोग के साधन में भी ऐसी जगह हो कि ठाकुर जी की हम सेवा करेंगे तो ऐसा ही होगा। एक ब्राह्मण थे, जन्म था दक्षिण देव, नाम था गोपाल, वो महाप्रभु के संपर्क में आकर के भक्त बन गए, नारायण के भक्त घूमते धामते वे पिता के मृत्यु के बाद परलोक गमन के बाद में उत्तर भारत में आए और गोमती के निर्गम स्थान पर पहुंचे। गोमती माने जहां पर कि सालग्राम की शिलाएं मिलती है, गंडक में तो वो गंडकी नदी जहां से निकलती है वहां पर बड़े सुंदर सुंदर सालग्राम निकलते हैं। सालग्राम का चिन्ह है उसमें सोना लगा है और चक्र उसमें रहता है और सोना भी लगा रहेगा स्वाभाविक रूप में। तो वहां पर गए तो एक बड़ा सा उनको सालग्राम उसको लेकर के वृंदावन में आए और वहीं पर उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। झूलन का दिन था, सभी लोग ठाकुर जी को झूला में झूला रहे हैं, इनकी भी बड़ी इच्छा हुई है ठाकुर जी आपको झूले में कैसे झूला, आपका श्रृंगार कैसे करो, बड़े खेद होकर के सो गए रात। सालग्राम शिला से उनको क्या श्रृंगार करेंगे, उनको माला ऊपर से रखती तुलसी ऊपर नीचे रखती बढ़ती है क्या श्रृंगार। रात में सोए तो उन्होंने कहा तुम्हें तुमको दुख हो रहा है, हमको श्रृंगार करके चढ़ाएगा इसकी, जाओ देखो जो हमारा कितना सुंदर रुख है, अभी जाओ अभी पशु की नीत खुली। और जाकर के उन्होंने सालग्राम की बिटिया को उन्होंने इतिहास को ऊपर से कपड़ा हटाया, देखा जो शहन किए हुए कौन रखी वही सालग्राम जी। जब देखा और उलट करके ऐसे चित्त सोए हैं, एक मुखमंडल यहां पर बंसी के लिए ऐसे हाथ किए हुए और कमर बंकी और पैरों पर पैर रखे हुए, देख करके आश्चर्यचकित हो गए, प्रेम में भर गए, गदगद हो गए, खड़ा किया देखा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों विग्रहों का की आकृति उसमें करनी है। गोविंद जी के चरण और जी के चरण और गोविंद जी के दस्तक और गोपीनाथ जी का एक विग्रह के अंदर उसका श्रृंगार किया और झूले करा करके और उसको झुलाया। जिसे कृष्ण प्रेमे प्रेम स्वरूप दे प्रेम भावी कृष्ण प्रवेशी श्रेष्ठ जगत नीति दी है। ये राधा जी कौन है? वही जो सेवा करने की प्रवृत्ति है, वो प्रेम से वही महाभाव का स्वरूप है। ये कोई स्त्री नारी या महिला या स्त्री या किशोरी नहीं है। कोई भी किशोरी भी हो, सब रूप में कृष्ण के चित्त हो परिपूर्ण रूप से तू नहीं कर सकती, यहां तक कि लक्ष्मी भी नहीं कर सकती, सत्यभामा रुक्मिणी भी नहीं कर सकती, समस्त गोपियां भी नहीं कर सकती है। इसलिए सब गोपियों को छोड़ करके एक राधा को लेकर के वो अंतर्मित हुए थे राज के। इसलिए कृष्ण की प्रेयसी श्रेष्ठ प्रेयसी आनंद रस प्रतिभा आनंद रस प्रतिभाविता ये गोपियां क्या हैं? आनंद चिन्मय रस उसकी प्रतिभावित मूर्ति स्वरूप प्रतिभाविता भी ताभीर्य एक निज रूप तया कला भी। ये कृष्ण की कलाएं हैं। कलाएं मैंने क्या अनुसंग कलाएं मैंने उनकी स्वरूप शक्ति सच्चिदानंदमय जैसे कृष्ण हैं निज रूप तया कृष्ण का जैसे सच्चिदानंदमय उनकी ये जो कलाएं हैं गोपियां और उन्हें जो सबसे प्रधाना है वो कृष्ण स्वरूप कृष्ण जैसी भी प्रतिभाविता प्रतिभावित मैंने प्रतिभावित मैंने कहा हिदर में विभावना के द्वार उनकी सेवा की विभावित वो रूपया अपने रूप के समान ही उनकी कलाएं अथा तो शक्तियां और सब समय कृष्ण की भावना से विभावित कैसे हैं ये आगे बढ़ जाएंगे कैसे विभावित गोलोक में वो कृष्ण आदि पुरुष जो गोविंद हैं निवसत अखिल आत्मभूत इन सब के साथ में पीड़ा करते हुए विलास करते हुए जिन्हों नित्य वृंदावन में स्थित हैं वो कृष्ण वो गोविंद नादि पुरुषम तमाम भाई चिंता में मैंने अपने रूप प्रतिभावित वो मूर्तियां ये गोपियां हैं। जब ये कोई स्त्री इत्यादि नहीं उनके साथ में नित्य निवास करते हैं जो लोग वृंदावन धाम में वो गोपिंद जो है वो आदि पुरुष हैं उनकी मैं वंदना भजन करता से महाभाव है चिंता मनीषा और महाभाव कैसा है चिंता में तब कृष्ण जैसा चिंता करते हैं वैसा ही हो जाता कृष्ण जैसा चिंता उन्होंने इच्छा की ये राष्ट्र हो साथ ही साथ में राष्ट्र इच्छा की ये राधा जी की श्रेष्ठता संपादित हो तो कैसे श्रेष्ठता संपादित हो उसी का नाम है राग श्रेष्ठता संपादन में और कृष्ण की सेवा वहां पर सबको नहीं करती थी। चिंतामणि सार चिंतामणि भी नहीं चिंतामणि का सार किसी एक वर्ग व्यक्ति को
एक चिंता मिली और किसी को दस मिली तो श्रेष्ठ कौन हुआ? दस हजार कौन हुआ
बच्चा? एक बार
प्रश्न
बराबर
दस वाला भी जितना है और एक वाला भी चिंतामणि है। वो चिंतामणि से कहा कि आप लाख रूप में प्रकार तो लाख बन जाएंगे अगर ये आप एक ही बने रहिए और सब इच्छा पूर्ण करेंगे। इसलिए लाख बराबर वो एक ही। इसीलिए हरिनाम में ऐसा बतलाया गया राम नाम में कह नाम चिंतामणि राम रामेति रमे रामे
मनोरमे
सहस्र नाम ना भी स्त्रियम माने क्या भगवान का एक नाम और सहस्त्र नाम दोनों में कितना अंतर है? अरे एक नाम से जो होगा इसलिए वहां पर सभी पूर्ण है सभी चिंता मनुष्य तभी रस की दृष्टि से कुछ विशिष्टता है कृष्ण नाम तीन राम नाम एक कृष्ण नाम उसके बराबर होता है। सहस्त्र विष्णु का नाम जैसे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं विष्णु का एक हजार नाम एक राम नाम के बराबर और तीन राम नाम बराबर होगा एक राम नाम पाने से संसार से वो पार कर देंगे भव सागर को और कृष्ण नाम पाने से संसार से पार करके और तब कृष्ण प्रेम दे इसलिए वो तारक भी और कृष्ण नाम तारक और पारा तारक माने तारने वाले और पारक माने प्रेम देने वाले कृष्ण का नाम तारक और पारक दोनों है और राम नाम किंतु जब राधा रमयती थी राम जब होगा तो वो उस प्रेम से भी अधिक कुछ देने वाला बन जाए तो वो पारक से भी अधिक पारक हो जाए। तो कृष्ण वंशा पूर्ण करे यही कार्यता वहां जो उज्जैन मणिनी ये सब उदाहरण के साथ लिखे हैं कि कैसे कृष्ण की इच्छाओं को चिंता मणि होकर के पूर्ण करते ललिता सखी तार काय बिंदु ललिता जाति सखियां उनकी काय भी होती काय भी माने अलग अलग उनके शरीर मार राधा प्रेम राधा प्रति कृष्ण स्नेह राधा के प्रति जो कृष्ण स्नेह सुगंधी उर्वरता ताकि सुगंधी देव उज्जवल रहा राधा जी के अंगों का वर्णन करते हैं कि क्या है हमारे अंगों में मट्टी जल अग्नि वायु और आकाश मनी शून्य ये पांच चीजें हैं किस शरीर राधा जी के अंगों में क्या चीज है किस चीज से बनी है
महाभाव
महाभाव माने कृष्ण के प्रति जो भाव है वही महाभाव का है वो कृष्ण भावित जागृत इंद्रियता कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है स्नेह है मान है प्रणय है राग अनुराग भाव महाभाव वो एक एक अंग श्रीमती जी का जैसे कपड़ा है कोई कपड़ा सूती है कोई नाइलॉन होता है कोई ऊनी कपड़ा होता है कोई रेशम का कपड़ा होता है कोई आजकल कितने कितने तरह के सूतन का जो कपड़े उसी तरह से राधिका जी का जितना शरीर है वो सब महाभाव का ही सब बना हुआ है राधा प्रति कृष्ण स्नेह सुगंधी होता वरना जैसा मेरे प्रेम
प्रेमांध मकरंद
प्रेमांध मकरंद स्तवराज स्तवराज है वो। स्तवराज माने क्या?
समस्त स्तवों का राज।
जितना रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्तव बनाया है उसका स्तव का ये
राजा
है। और स्तव पर के स्तव स्तुति करने से जो फल हो वो स्तवराज राधा प्रेमम भोज मकरंद ये है। इस तरह यह राधा जी को और कृष्ण को दोनों को प्रसन्न कर देता है इसलिए इसको स्तवराज कहते हैं। इसमें ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने वर्णन किया है किसके लिए? साधकों के लिए। कभी भी जड़ीय भाव राधा जी में कभी आरोप कोई न करे और इसी रूप में उनकी भावना है। पहले तो साधन में राधिका जी के चरण में जितने चिन्ह है ना उसको पहले स्मरण कर होगा।
इतने गर्मी है
तो चरण कमलों की मृदुता और कुमराई और लालिमा की चिंतन कर। ये तो बहुत पीछे की बात है। पहले ये भी छोड़ो, पहले हरि नाम कर रुचि के साथ मुकृति के शरीर उनकी कथाओं का श्रवण कर और कुछ साधन बने कर। हम लोग सब करते हैं अपने लिए। अभी करना सीखे तीन के लिए भगवान के लिए करना। अभी बाजार कभी जाते हैं सवेरे किसके लिए? अपने लिए कर। अभी भगवान के लिए बाजार करना सीखिए कि कैसे भगवान के लिए बाजार करना। भगवान के लिए अच्छे अच्छे फल अच्छी अच्छी सब्जियां अच्छे अच्छे कपड़े सब कुछ उनके घर बनाए ना तो चिंता करके हम इसमें ठाकुर जी का घर सबसे उन्नत और सबसे अच्छा किस रूप में बने। जिसमें ठाकुर जी की सेवा के लिए हम लोग सेवक हैं और हमी के लिए ये सेवक ठाकुर जी के लिए ऐसे करते 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 ये अर्चन मार्ग है। फिर भाव मार्ग आएगा तब इसके बाद में प्रेम आएगा तब ये सब चिंता नहीं। ये कारण इसलिए इसको सुन करके किसी जन्म जन्मांतर में यह बीज हो जाए अभी अर्जुन करते 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 तो फिर यही व्यास मही रूह का रूप धारण करें इसलिए इसको दे रहे। इसको चिंता नहीं समझना ये सब ये कहते हैं कि चिंता नहीं। यदि चिंता मणि के रूप में अपने हृदय में इसका हमने बीज बो दिया और ऐसे ही साधन भजन करते रहे तो उसके लिए संसार तुच्छ हो जाए और कृष्ण भी वशीभूत हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं राधा के प्रति कृष्ण का जो स्नेह है वह राधा जी के लिए सुगंधि उद्बर्तन के समान है। उद्बर्तन मैंने क्या उद्बर्तन स्नान करने के पहले तेल या उबटन लगाया जाए इसलिए सुंदर बनने त्वचाओं को कोमल शक्तिशाली और सुंदर बनाने के लिए ये सब चीजें लगाए। विशेष करके बच्चों को वो कौन सा तेल ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल लगाते हैं इसलिए। या काली लड़की हो तो पहले ही से चिंता करते हैं इसको कैसे सुंदर बनाए। कलकत्ते बंगाल की लड़कियां जो कुछ काली होती हैं या लड़के वो लोग गंगा में स्नान करते हैं किस लिए? वो रंगा का जो पानी है ना मठमेला वहां का वो यदि लगेगा ना बार बार स्नान करते करते काली में क्या उसमें क्या गुण है वो पूरा बना तो लोग स्नान करते। तो ऐसे ही आप वहां पर बिना तेल लगाए हुए नहीं करें तो इसलिए ये कह रहे हैं कोई भी हो व्यक्ति अपने सौंदर्य को निखारने के लिए
अबाटा
बंगाल अबाटा कहते हैं अबाटा चाहे वह सरसों का कुमकुम उसमें मिला करके हो या किसी का हल्दी चूना चूना हल्दी और आटा मिला करके उसमें कुमकुम लगा सकते हैं उसमें कोई सुगंधी चीज लगा दें उसकी तरह से वो आता है। तो पत्नी की कृष्ण उसको लगा करके मैल साफ हो जाता है, उसका तेल भी भीतर में चला जाता है प्रदर्शनी को, और उसको लगाने से शरीर का मालिश भी हो जाने से शरीर की क्लांति भी दूर हो जाती है सब प्रकार से। और इसके बाद में तब क्या करेगा, तो कृष्ण के प्रति जो कृष्ण का राधा के प्रति जो स्नेह है ये उनका उपचन है। मान क्या राधा जी देखती है कि हमारे प्रति कृष्ण का स्नेह है, आनंद से भर जाती है। किसी पत्नी के लिए पति जब उसको प्यार करता है तो उसका सबसे बड़ा सुहाग, और हजार उसको कहता है देखो सोने के माल में रहना, 10,000 उसके लिए सेविकाएं नियुक्त कर दी उसकी सेवा के लिए, और इंद्र जैसा समस्त संपत्ति उसको दे दी, किंतु पति कभी उसके साथ में बातचीत नहीं करता है, न उसके पास आता है, न प्रेम करता है, खाने पीने की सब चीज की सुविधा कर दी, और पास ही में एक कुटी में रहने वाली एक स्त्री के प्रति वो प्रेम करता है। ये दोनों में कौन सा अच्छा रहा जिसको वो प्रेम करता, यही राधा जी का कृष्ण का जो प्रेम है उनके लिए ये पहला उदाहरण है। तो उनका शरीर क्या है जो आगे बताएंगे, ये तो उपकरण ही कृष्ण का राधा के प्रति स्नेह। प्रमाण क्या रहा है, राधाया पत्नी राधा कृष्ण प्रणय विकृति राधवी शक्ति स्मार्त एकावती भू उदादी चैतन्यख्यात्मात्म राधा भाव उचितम कृष्ण। ये चैतन्य महाप्रभु की आज से लीला हो रही, जो जाएगा बिना रो आएगा नहीं, जो जाएगा जरूर रोएगा, कुछ न कुछ जरूर होगा, विशेष करके आजकल पूरी लीलाएं हो रही। अभी संन्यास का आएगा, संन्यास के पहले सबको लीलाएंगे, संन्यास के बाद सब समय बुला यही महाप्रभु ये है कौन उसी के लिए ये बतला रहे। राधा कृष्ण प्रणय विकृति, कृष्ण की प्रणय की विकृति का नाम, प्रणय की विकृति क्या है लादिनी, और उसका महाभाव, ये महाभाव कृष्ण की राधा के प्रति प्रेम की विकृति माने प्रेम का ये फल है। विकृति माने वो विकृति मत समझ, तो यही राधा जी का स्वरूप। वही जब दो रूप में है तब राधा कृष्ण एक रूप में चैतन्य महाप्रभु ताते सुगंधी देव उज्ज्वल, इसलिए उनका प्रेम कृष्ण का राधा जी के प्रति स्नेह यही उद्वर्तन हुआ, उससे उनका शरीर सब समय सुगंधित रहता है। जहां देवी राधिका जी रहेंगी चारों तरफ में वो बन राधा जी के गंध से भरपूर हो जाता है, और समझ जाते हैं कि राधा जी यहां पर कारुण्यम भाया स्नान ये सब सामान की जने संक्षेप में थोड़ा सा देख पाते बतला करके आगे कारुण्यम भाया स्नान प्रथम अब तेल लगाए या अवसर लगाए उसके बाद में स्नान करना जरूरी है। राधा जी तीन बार स्नान करते हैं, साधु संत लोग तीन बार करते हैं, सवेरे स्नान, दोपहर को और स्नान, तीन बार स्नान। इसमें साधारणतर महिलाएं जो कि अभी भुआ हैं किशोरी हैं वो अंधकार में स्नान कर लेना ही अच्छा समझती है, कोई देखते नहीं, और स्नान नदी का स्नान सबसे सुंदर होता है में जिसकी धारा चलती हो। आजकल जमुना जी का धारा अब धारा प्रवाह नहीं है इसलिए गड़बड़ हो जाता ही पूर्व अभ्यास वस्त और श्रद्धा के कारण लोग स्नान कर लेते हैं, नहीं तो कोई जान बुझ करके इसमें स्नान गंगा पत्तान में जाओ, जाकर के पानी अधिक नहीं, एक धारा उसमें अभी पानी धारा वाला अलग कर दिया है और एक धारा हम लोग उधर से बहती है, उसमें पानी थोड़ा सा ही बात है। पानी एकदम निर्मल देख करके आदमी को शायद अभी तक रहे, महिलाएं तो सवेरे देखेंगे कि कोई आदमी अधिक नहीं है, पुरुष लोगों का भी आना जाना नहीं है, उसी के बीच में जाकर के स्नान कर रहे, इसलिए वो जाकर के सवेरे उसमें डूब करके को आम के साथ में धारा में स्नान कर ये बता रहे हैं। कर्म नामित धारा है स्नान प्रथम, तय की तीन संधियां होती हैं, प्रथम कैसो, मध्य किशो और
मध्यजीवन
और अंतिम किशो। वह संधि इसके बाद में नव किशो और इसके बाद में जौवन उद्गम होने से पहले एक व्यक्ति प्रथम स्थान कर्म किसको कहते हैं, दूसरे के दुख को देखकर के हृदय का द्रवित हो जाना ही करना, जिसका दूसरों का दुख को देखकर के हृदय से हृदय द्रवित नहीं हो जाता मनुष्य नहीं, मनुष्य का प्राणी वो जंगली मनुष्य है, जिसका जितना ही अधिक द्रवित होता है उतना ही उसमें दया समझे, और यही पिता का सौंदर्य है। करुणा का और अपराधिक क्षेत्र में इसका और भी व्यापक अर्थ है, बहुत व्यापक अर्थ। बचपन में कोई सुंदर या सुंदरी हो तो वो चंचल होती है या चंचल होता है, इधर उधर दौड़ते रहेगी, कोई भी बात नहीं, कपड़े इधर उधर जा रहे हैं कोई भी बात नहीं, अभी छोटी सी बालिका है या बालक है, घूम रहा है। हमने तो देखा कि 10-11 वर्ष तक बच्चे हम लोगों के समय में नंगे रहते थे, कोई बात नहीं, लड़कियां भी वैसे ही 8-10 वर्ष तक कोई पैंटून और कुछ पहनाने की कोई जरूरत, आजकल तो जन्म लिया बच्ची ने साथ साथ में उसको लगा देते हैं कपड़े से झिंडी से खतरे, कल जी होता चला गया ना भावना ऐसी की थी, भाई और बहन दोनों एक साथ में बैठ करके रिक्शा में जा रहे हैं, दूषित नत्रों से लोग देखेंगे इसको ला करके ले जा रहा है, इसके अतिरिक्त तो कोई भावना ही नहीं आएगी, गंदी भावना ऐसी लोगों की हो, उस भावना से मत देखिए, इसको प्रेम की भावना से देखिए। तो बचपन में बाल्यकाल में चपलता रहती है, धीरे 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 पौगंध भाव आया, उसमें अंग थोड़े से स्थूल होने लग गए और उसमें सुंदरता इत्यादि बढ़ते निकल गई। अब ये जब वैसंधि ने किशोर के दरवाजे पर देवी पर जो पदार्पण किया तो वो जो चंचलता थी अब धीरे धीरे केवल आंखों में आ जाती है चंचलता, और शरीर की चंचलता स्थिरता उसमें आंखें चंचल हो जाती हैं, ये राधा जी के लिए वर्णन करते हैं और लोगों के लिए, और ये साधारण रूप में खाद्य इत्यादि में कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं उसमें करुणा बरसती है, करुणा मैंने क्या आंखों से भी करुणा, शरीर से मुखारविंद से करुण भाव, यह रसता दीपक है, ये प्रथम भाव में उत्पन्न, इसलिए कहते हैं तारुण्य की धारा में करुणा की धारा में उस स्नान कर कृष्ण का उपन लगाया प्रेमता, और वो कारुण्य में कर्ण किस लिए कृष्ण दर्शन के लिए, अभी पूर्व राग हो रहा है, वैसंधि में पहले तो ये पूर्व राग हो, पूर्व माने कृष्ण के दर्शन करने के लिए अत्यंत उग्र मैंने व्याकुलता उनमें अंदर था, आतुरता व्यक्त उत्पन्न था, उसमें करुणा रहती है, इस करुणा के लिए राज्य करुणा की धारा में पहले द्वारा स्नान करती है, अब फिर और को आता पर मध्य में कारुण्यामृत अब और भी कुछ बढ़ गई, तब धारा मध्यम स्नान इसके लिए बतलाया, जो काम काम अधिक रहता है और लोगों का आगमन नदी के घाट पर अधिक हो जाने से वो बाहर में निकल करके नदी के किनारे स्नान न करके दास दासियों के द्वारा जो पानी लाया गया है घर में ही बाथरूम में बैठ करके गोपनीय स्थान में बैठ। माने क्या, कृष्ण की राधा जी की जो सहेली हमें ललिता विशाखा चित्रा रूप में मिली, कृष्ण का गुण वर्णन कर रही है। दो कारण कब बढ़ा पीड़न नटवर कर्म कर्म विकृत बाकर कर्म कपिशम दय जयंती समालम अरंध्यान ग्रीन अगर सुधया पीड़न, ये श्लोक का वर्णन करते हुए और कृष्ण के गुणों का वर्णन कहो। इन आंखों का एकमात्र यथार्थ फल कृष्ण दर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो कृष्ण पंथ में बांसुरी बजाते हुए सखों से प्रदर्शित होकर के गायों की मंडली लेकर चल रहे हैं और बलदेव प्रभु के पीछे पीछे बंसी बजाते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से कथा छोड़ते हुए इन आंखों का यही फल है उनका यह दर्शन किया जाए। कहो यदि जन्म होता तो मृगित होकर के आने से अच्छा, उनके पति भी उनको लेकर के कृष्ण दर्शन के लिए प्रेरणा दे, चलो चलो दर्शन करने के लिए, तुम्हें कोई क्या कह लेगा हम तुम्हारे पीछे। वो भी फकर के समय भर से कृष्ण की तरफ में देखते हैं और पति उनको ये क्षेत्र उनको ये देते हैं और सब देते हैं। हम लोगों के पति और सब लोग बड़े बाधा देते हैं, इसमें मर करके मृगी होना अच्छा है जो कृष्ण का दर्शन सब समझते हैं। अरे आकाश में बादल होकर के हम जरूर जन्म दे लेते हैं, तो कृष्ण जहां जाते हैं हम छाया ऊपर करते हैं और कृष्ण के ऊपर में थोड़े थोड़े सुंदर सुष्मतल वृद्धों को इस स्तर से करते। इसके द्वारा क्या हो रहा है, कृष्ण कितने सुंदर और मधुर हैं, राधा जी को प्रेरणा दे रहे हैं और उसकी धारा में ये स्नान करने से कृष्ण के प्रति प्रेम उनका इसने उनका संदर्भ किया। ये दूसरा स्नान किया और रामायण हरा तरु पर स्नान संध्या के समय में फिर स्नान, दिन भर में खूब गर्मी पड़ी है, गर्मी पड़ रही आज तो कुछ थोड़ी सी छाया होने की वजह से तो अभी गर्मी की कमी नहीं, बल्कि खूब गर्मी में पानी बरस जाए थोड़ा सा तो और भीतर से भमका निकलता है और गर्मी बच जाती है, पसीने आने लगते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आदमी इसमें ये हो जाए, और यदि पासी में नदी हो और कुछ उसी पर जल जा रहा हो जैसे कि हरिद्वार में या और सब नदियों में होता है, गंगा के किनारे जाओ देखो उसमें तो सब समय निर्मल पानी रहता है गंगा में, उसमें जाओ की इच्छा होगी स्नान करने बस आदमी स्नान कर या धारा में। वैसे ही अंतिम किशोर में लामान्य धाराए प्रभु पर स्नान, लामान्यमृत माने उनके अंग प्रत्यंग सब में जैसे सफेद वो क्या होता है मुक्ता भीतर से उसका संदर्ज एकदम निकलता रहता है, ऐसे पानी में स्नान जब धारा में स्नान को किया सब गर्मी उसकी दूर और उसके अंग शरीर जब पानी में थोड़ा सा यहां तल 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 करता है ठीक उसी तरह से राधा जी के उस समय उनके अंग जो है कृष्ण के द्वारा प्राप्त जो लावण्य है उसने कम स्नान कर समस्त अंग लावण्य में उस समय कृष्ण उसको देकर के अत्यंत मुक्त, माने ये सब कृष्ण संबंधी उनका हाव भाव कपड़ा वसन अलंकार जो कुछ है सब ये साधक प्रेम की स्थिति में जब उसको भाव उत्पन्न हो जाए तब की स्थिति में ये सब साधन भजन में ये सब सहायक अरागानुवाद भक्त मंजरी के भाव। अभी हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सके, भजन करते करते किसी दिन जब इसकी जो बहुत सुविधा जीवन में वो क्षण आएगा तब इसकी महिमा मालूम होगी कि उन्होंने हमारे लिए त्याग दिया है रघुनाथ दास जी का। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए जमीन खोद खोद करके लाखों अशास्त्री मोटी हीरा जवाहरात भर करते रहते और उसको पता नहीं, वैसे हम लोगों के लिए इन महात्माओं ने रूप और रघुनाथ जो स्वामी ने ये इसके संबंध में सिर्फ आत्मा
भगवान का परसों
नमो महापतन्नाय कृष्णाय कृष्णाय कृष्णकौतन्मनमेदैरक्षि हे कृष्णकर्णाकृतोपिन्नपन्नोदवत्सते भूतो सप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरि प्रणमामि आदेविका सुभरदया च जाति सप्तभूविसन्दवसमुदमतासि
और
अलंकार होता है या वस्त्र अंदर से बाहर दिखे, जो शरीर के शोभा के लिए, शरीर के लिए लज्जा इत्यादि शब्द के लिए वस्त्र दिखता है, और उनको की शांति के लिए अलंकार, और उसमें भी अलंकार और
आभरण,
आभरण
सिंगर
सिंगर सिंगार, ये सब चीजें ये अलग शब्द होती है। राधिका जी का अंग भगवान महाभाव, और जैसे कि काम के सुंदर है तो ये सुंदर क्या हो, कृष्ण के कृष्ण की महिमा या उनके गुणों या उनकी बातें उनकी कथाओं को सुनने में जो आनंद होता है उनको, ये हो गया परम। इसी तरह से और ये सब बदलाव हैं, राधा जी का कुछ भी अंग हो, कर्तव्य हो, वसन हो, भूषण हो, इत्यादि सब कुछ महाभाव के द्वारा ही ये सब पानी के लिए तो कामयाबी समझने में करने की क्या कितना दिन लगता, किसी भी शास्त्र में ये सब चीजें प्रबल अलंकार शास्त्र है ना, उसमें भी इन सब चीजों के लिए ये सब तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात, हम लोगों को पता सुन करके या देख करके भी पंडित भी कोई कुछ भावी नहीं होता, दिखा शिक्षा तक नये नम गर्वराष्ट्र बदन गर्वगत मुखया कवनाम ग्रहणे भविष्य, कौन हमारा एक भाव, कौन हमारा ये भाव था, क्या नैनों में अश्रु हमें रोमांचित हो गया, गर्वत भाव आ गए, पश्चिमी के बंधन से सब शरीर भर जाएगा, ये सब नाम लेने के समय में होगा कब। अच्छा तो ये कौन सी अवस्था है, न खराते ये होगा न खराते तो होगा नहीं। अब देखें हम लोग हम लोग में कितना आनंद है, विचार करें, ऐसे मालूम नहीं होगा, जब विचार करेंगे तो देखेंगे कि हम कितने अनर्थ के पानी में तो होगा कैसे, लिखा हरिनाम के द्वारा साथ साधन और शास्त्र जो कुछ ऐसा कृष्ण के लिए मिल जाए, ये लिखा तो गलत तो नहीं, किंतु अनर्थ नाम की कोई चीज है तो अनर्थ को करने के लिए चेता नहीं करते, तब जो अनर्थ में रह करते वैसे ही नाम एक कोटि जन्म में हम यदि करेंगे तो हो जाएगा नहीं होगा, एक कोटि जन्म में अनर्थ में रहेंगे और गरीब अनर्थ से निकलने के लिए प्रयास करना पड़ता वकुंठा, हम नाम तो करते हैं पूरा नहीं करते, पढ़ा भी तो करते हैं किंतु अनर्थों को दूर करने की चेष्टा नहीं करते, इसलिए हमारा नाम में वो सब चीजें अनर्थ दूर होगा, निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी। उन्होंने कहा है भावावस्था की बात, ये कला भविष्य ये उस समय की बात, और वो भी है माइक, माइक मन गया आग जलाया किंतु धुआं ही निकल रहा है, क्योंकि लकड़ी गीली है, जब तक लकड़ी गीली रहेगी
तब तक भगवान निकल, जब ज्ञातम दूर हो जाएगा तो उसमें से आप किसी का दिखाई और उसमें थोड़ा सा घी दे दिया जाए तो वो एक हो जाए, फिर थोड़ी सी हवा चलने लगेगी तो उसकी और अंत में महाभाव की स्थिति में सुदीप्त महाभाव की अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु की स्थिति सुदीप्त की थी। हम लोगों को उनको देख करके भी कुछ नहीं है, जब एक सेकंड के लिए अपनी आंखों में थोड़े से आंसू भी आए हैं फिर सूख गए, और किसी किसी के तो वो भी नहीं है। ऐसे नाम करने से अच्छा तब 10 दिन में तो कुछ ना कुछ हम लोग को हो जाएगा, फिर 50 दिन में फिर वैसा हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। भगवान अनुभव करके जब देखेंगे कपट है और किंचन है तो ऐसा संग दे देंगे, तब बिना संग के लिए नहीं। महाप्रभु जी को वो भगवान है तभी ईश्वर कृपा प्रसंग नहीं होने से दिखला रहे हैं जो मूर्ख। और जिस वातावरण में इसमें शिवास पंडित अद्वैत आचार्य नित्यानंद गदाधर है, स्वरूप दामोदर जगदानंद पंडित हैं, और उसमें कैसे कीर्तन हो रहा है, कैसे भाव हो रहा, महाप्रभु बात से बढ़ा पीड़न कर रहे हैं या गाने जैसे कृष्ण कृष्ण और गदाधर प्रभु कैसे कर रहे हैं, ये सब वातावरण है। तो ये सब वातावरण ऐसे ही मिल जाएगा बिना साधन मन किए, अब विषय में मुंह रखते हुए शरीर में आसक्त हुए शरीर में रोग शोक भय मुंह सब भरा पड़ा हो जाएगा, जहां निष्ठा में रोग अपने आप कम हो जाए, शोक अपने आप कम, और वही जल रुचि होगी और आसक्ति आएगी तो एकदम करीब करीब सब कोई भी चीज नहीं है, कोई विरोधी भाव ही नहीं आएगा, ऐसी व्यवस्था भगवान कर देंगे एकदम ऊंचा भजन करने के लिए वातावरण एकदम है। मां प्रभु आए तो कैसे कैसे होगा, और कुछ देर पहले प्रभु पास भी आए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती था, कैसे उनके परिकर मिल गए बतलाओ को विद्वान रसिक साहित्यिक पक्का देने वाली सब विजन एकदम ऐसे सब वो सब प्रवेश प्रभु सब सृष्टि कर देते भजन करने के लिए। ऐसे ही जब महापुरुष लोग आते हैं तो भगवान उनको आश्रय कर जो सिद्ध नहीं है उसको भी जब निष्कपट है तो वैसा ही उनको आवश्यक। अब किसी किसी को देखकर विभाजन कर रहे हैं, कोई परिवेश नहीं कोई व्यक्ति नहीं विश्व में नहीं लगे रोज रोज कितना ही लोग छड़ाते चाहते हैं जितना ही थोड़ा नहीं चाहते हैं तो वो क्या करता है जब नुकसान कम करके ऐसा वो करता है उतना ही जितना ही चेष्टा करेंगे उतना ही कल गर्म करते भगवान की कृपा है, और ये सब निर्भर करता है हमारे धर्म के ऊपर पर विश्व अपने आप बनता जाएगा, कोई भी उसके लिए समस्या नहीं रहे। उसी को कहते हैं जो प्रेम में अभिज्ञा उसे भाव अवस्था अभिज्ञात अभिज्ञात क्लेश अपने क्लेश कुछ रहने पर भी अभिज्ञा मतलब और उसमें कोई
आएगा
निर्विघ्न अनुपात इसमें विघ्न आता है भाव अवस्था में भाव अवस्था तक में आएगा किंतु उसको याद ही नहीं याद हुआ आप प्रेम अवस्था में
संपूर्ण
और कोई बिघ्न नहीं आएगा। अभी हम लोग जाएंगे ना एक शान या एक गाय उठा करके सिंह से पटक दिया, क्यों पटक दिया फिर फटका क्यों? अभी कर्म हमारे अभी शेष नहीं, फिर फटक दिया। जब कर्म हमारे जबकि निशब्दी हो जाएगी भक्ति, मैंने अब कर्म नहीं रहा, अब तो भगवान के भजन के लिए कुछ भगवान उसको जीवित कर रखा, इसमें उसका नहीं रहेगा, अब कोई विघ्न नहीं आएगा। विघ्न का कभी कभी कर्म रहेगा, उसके भजन के प्रभाव को बढ़ाने, इस तरह से उसका भाव भी एकदम। उसमें जब हृदय कुछ निर्मल रहेगा, भक्तों का संग होगा, भगवान का लीला चरित्र इत्यादि होगा, तो उसमें मैंने वो वासना उसके हृदय के समान अपने जीव समवासना बना लेता है। समवासना में जैसे हम लोग लीला देखें, देखो रो रहा है पात्र, हम भी रो रहे हैं, ऐसे नहीं रो रहे, वो रो रहा है कि प्राण दुखित होकर हा कृष्ण कर देंगे, तो कुछ लोग रोते हैं, तो जिनका कुछ थोड़ा सा निर्मल है वो तो रोते हैं, जिनका हृदय निर्मल नहीं है वो रक्त देखते रहते हैं। भक्ति राज्य में समवासना इसीलिए जरूरत है, समवासना के लिए संग जरूरत है, बिना संग के लिए समवासना नहीं। ये सब जो कह रहे हैं भक्ति का, भक्ति की अत्यंत उच्च सिंह की बात कर रहे हैं, सिंगार है ना, भक्ति या प्रेम कार्य सिंह, सिंह माने एवरेस्ट सिंह, वहां की बात कर रहे हैं, उच्च सबसे श्रेष्ठ बात, इसको हृदयंगम करना, समझना, उसके अनुसार अपनी वासना को बनाना। और भगवत में जैसे बताया